हम सफर न्यूज रूम से मैं अंबिका पेश है समाचार। आज दिन बुधवार तारीख 28 मई 2025। मंगलवार को कई डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री क्रिस्टियन दुबे से बिल 106 पर बात करने के लिए क्यूबेक सिटी गए, जो चिकित्सकों को उनके वेतन के 25% उनके प्रदर्शन से जोड़ेगा। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें अपने मरीजों की चिंता है और इनकी संख्या दुगनी अगर होती है तो इसकी खराब क्वालिटी वाली दवा मिल सकती है। हम जैसे एक फास्ट फूड दवा की ओर बढ़ रहे हैं। बिल 106 पर जैसे ही विचार विमर्श शुरू हुआ है, दुबे ने 2026 की गर्मियों तक सभी क्यूबेक वासियों को स्वास्थ्य सेवा प्रोफेशनल तक पहुंच सुनिश्चित करने के अपने लक्ष्य को दोहराया है, लेकिन कुछ डॉक्टरों का कहना है कि इसके लिए आपसी कमिटमेंट की आवश्यकता है। इसके अलावा फैमिली डॉक्टर्स ने गणना की है कि यदि उन्हें अधिक नर्सेस, सोशल वर्कर्स और मनोवैज्ञानिक मिलते हैं तो वे रोगियों को प्रतिवर्ष 650 से अधिक अपॉइंटमेंट्स दे सकते हैं। उनका कहना है कि दुर्भाग्य से फर्स्ट लाइन ऑफ रेस्पॉन्डर्स में इस समय फैमिली चिकित्सा समूहों में पेशेवर अपर्याप्त हैं। उन्होंने ये भी इच्छा व्यक्त की कि प्रतिवर्ष पूरा एक महीना वे कागजी कार्रवाई भरने में बिताते हैं। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि डॉक्टर अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे इन चीजों में उलझे हुए हैं। इधर FMSQ का कहना है कि बिल 106 डॉक्टरों के मनोबल को कमजोर कर रहा है, जिसके कारण वे इस पेशे को छोड़कर जा सकते हैं। वास्तव में 22% सामान्य चिकित्सक 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उन्होंने डॉक्टरों के इस अध्यक्ष को भी सरकार के लिए जवाबदेह ठहराया। इस बीच कुछ का ये भी कहना है कि स्थिति आगे आने वाले दिनों में खराब हो सकती है, इसलिए सरकार को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए डॉक्टरों के साथ मिलजुल कर काम करना जरूरी है। SPVM का कहना है कि मंगलवार सुबह कोडिनेश NDG में एक साइकिल सवार को एक कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर है। उनके सर में चोट आई है। ये टक्कर करीब सुबह 8:20 पर लकॉम एवेन्यू के पास हुई। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार 23 वर्षीय व्यक्ति सड़क पार करते समय जा रहे थे जब ये टक्कर मार दी गई। हालांकि शुरू में उनकी चोटों को जानलेवा नहीं माना गया था, लेकिन अस्पताल में उनकी हालत बिगड़ गई। वाहन का चालक 56 वर्षीय व्यक्ति था, जो घायल नहीं हुआ है। इस मामले की जांच की जा रही है। किंग चार्ल्स ने कैनेडा छोड़ा ही था कि मंगलवार को क्यूबेक की नेशनल असेंबली ने सर्वसम्मति से रॉयल से अपने सभी संबंध समाप्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव को PQ नेता पॉल सेंट पियर प्लामंडों ने प्रश्नकाल के बाद एक अन्य संसद ओटावा में एक महत्वपूर्ण दिन पर पेश किया, जहां किंग ने 1977 के बाद पहली बार क्राउन से स्पीच दिया था। PQ इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, जिसके पक्ष में 106 मत पड़े और कोई भी एब्सेंट नहीं रहा। यहां तक कि फेडरल लिबरल्स ने भी, जो कनेडियन संस्थाओं से अधिक जुड़े हुए हैं, इसके पक्ष में मतदान किया, जैसा कि CAQ सरकार की बेंचेस ने किया था। ये मतदान दोपहर 3:06 पर हुआ। किंग ने 2 दिवसीय छोटी यात्रा के अंत में दोपहर 1 बजे के कुछ ही समय बाद कनाडा छोड़ दिया था। मंगलवार को वेलिंगटन स्ट्रीट पर ओटावा में उत्सुक दर्शकों ने उनका स्वागत किया, जहां उन्हें रॉयल माउंटेड कनेडियन पुलिस द्वारा एक म्यूजिकल राइड से ले जाया गया था। क्यूबेक के सबसे उत्तरी क्षेत्रों में जंगल की आग के लिए अनुकूल परिस्थितियों के कारण जंगली क्षेत्रों में या उसके आसपास खुली आग जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्राकृतिक संसाधन और वानिकी मंत्रालय के अनुसार इस उपाय का उद्देश्य अच्छे मौसम की वापसी के संदर्भ में जंगल की आग के जोखिम को सीमित करना है। इसलिए अगली सूचना तक नॉर्थ क्यूबेक, कोट नॉर्ड, सैगनी लेक, सेंट जॉन, एबिटेबी, टेमिस्केंगू, मॉरिसी और सेंट लॉरेंस के क्षेत्रों में खुली आग जलाने पर प्रतिबंध है। मंत्रालय ने बताया कि आज सुबह 8 बजे लागू हुए इस आदेश का पालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। कैंप फायर, आतिशबाजी और आग पैदा करने में सक्षम उपकरणों का उपयोग निषिद्ध किया गया है। क्यूबेक में वर्तमान में केवल एक ही सक्रिय एक्टिव वाइल्ड फायर है, जो साउथ शोर पर है और ये नियंत्रण में है। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में सॉफू के अनुसार सतर्कता के लिए आह्वान जारी किया जा रहा है। एलन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विधायी एजेंडे के केंद्र बिंदु की आलोचना कर रहे हैं, जो पिछले साल के अभियान के दौरान साझेदारी में एक महत्वपूर्ण दरार है और अमेरिकी राजनीति और संघीय सरकार को नया आकार देने के लिए तैयार है। इस समय एलन मस्क ने कहा कि कम से कम 250 अमेरिकी मिलियन डॉलर के साथ ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन उन्होंने किया है और उनके वरिष्ठ सलाहकार के रूप में उनके प्रशासन के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति द्वारा इस बिल से निराश हैं। इसमें कानून में कर कटौती और ऑगमेंटेड इमिग्रेशन का मिश्रण शामिल है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ये एक बहुत बड़े खर्च वाला बिल है जो उन संघीय घाटे को बढ़ाएगा और उनके सरकारी दक्षता विभाग के काम को कमजोर करेगा। इसे डॉज के रूप में जाना जाता है। मंगलवार रात को इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये बात कही। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने तुरंत इन सवालों का जवाब नहीं दिया है। हालांकि सदन के माध्यम से कानून को आगे बढ़ाया जा रहा है और सीनेट में इस पर बहस हो रही है। मस्क की ये टिप्पणी ऐसे टाइम में आ रही है जब उन्होंने इस सरकारी काम से खुद को पीछे हटाते हुए अपने बिजनेस पे ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने ध्यान को समर्पित किया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपने राजनीतिक खर्च को कम करेंगे। कुछ अन्य समाचारों में, आज संसद के नए अध्यक्ष, नए प्रधानमंत्री और हाउस ऑफ कॉमन्स में कई नए चेहरों के साथ संसद काम पर लौट आई है। स्पीकर फ्रांसिस कारपेलेगिया आज पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स की अध्यक्षता करेंगे, जबकि उनके कार्यालय ने पुष्टि की है कि संसद के सभी 343 सदस्यों ने शपथ ले ली है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित लगभग एक तिहाई सांसद अप्रैल में पहली बार चुने गए थे और आज उनका पहला क्वेश्चन आवर होगा। कॉन्जर्वेटिव नेता पियर पॉलिएव्र अपने निर्वाचन क्षेत्र में फिर से चुनाव जीतने में विफल रहने के बाद दो दशकों में पहली बार हाउस ऑफ कॉमन्स से अनुपस्थित रहेंगे। पूर्व पार्टी नेता एंड्रयू शीर हाउस ऑफ कॉमन्स में कॉन्जर्वेटिव कॉकस का नेतृत्व करेंगे। किंग चार्ल्स ने मंगलवार को क्राउन से स्पीच के बाद औपचारिक रूप से संसद का उद्घाटन किया और माइनॉरिटी लिबरल सरकार ने कहा कि वे निचले आयकर ब्रैकेट में एक बिंदु कटौती के वादे को पारित करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ट्रूथ सोशल पोस्ट में घोषणा की कि गोल्डन डोम सिस्टम में कनाडा की भागीदारी पर 61 बिलियन अमेरिकी डॉलर के खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि जब तक कनाडा अमेरिका के एक राज्य के रूप में शामिल होने को स्वीकार नहीं करता, मिसाइल रक्षा कवच यानी गोल्डन डोम पर भारी लागत आएगी। उन्होंने कहा कि मैंने कनाडा से कहा है कि हमारे शानदार गोल्डन डोम सिस्टम का अगर वे हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें 61 बिलियन डॉलर देने होंगे, लेकिन अगर वे हमारे प्रिय 51वें राज्य बन जाते हैं तो इसकी लागत $0 होगी। इस बीच आपको ये बता दें कि एक बयान में प्रधानमंत्री कार्यालय ने लिखा है कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी बातचीत सहित हर अवसर पर एक स्पष्ट किया है कि कनाडा एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र है और ये एक ही रहेगा। राष्ट्रपति का ये पोस्ट राजा चार्ल्स यानी किंग चार्ल्स द्वारा संसद को एक क्राउन स्पीच देने के कुछ ही घंटों बाद आया है, जहां किंग चार्ल्स ने कनाडा की संप्रभुता को दोहराते हुए कहा कि सच्चा उत्तर वास्तव में मजबूत और स्वतंत्र है। उन्होंने अमेरिका के साथ कनाडा के संबंधों पर भी बात की और कहा कि दोनों राष्ट्र इंडिपेंडेंट तौर से अपनी सुरक्षा संबंध को परिभाषित करेंगे। कनाडा और गोल्डन डोम, ट्रंप ने पिछले सप्ताह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोल्डन डोम प्रणाली का खुलासा किया था। ये थे अब तक के समाचार। ज्यादा समाचारों के लिए जुड़े रहें रेडियो हम सफर से।